الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی آیت 258 ہے. پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ آیت الکرسی سے ایک مضمون شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دائمی ہے, وہ حی و قیوم ہے, ساری کائنات اسی کے بھروسے پر کھڑی ہے, زندگی بھی وہی عطا کرنے والا ہے اور وہ ازل سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, وہ ازل سے قائم ہے, ابد تک قائم رہے گا. تو ایسا نہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کہیں رخصت ہو جائیں گے تو تمہیں موقع مل جائے گا اپنی جان بچانے کا. صورتحال یہاں تک سنگین ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی, تو کوئی لمحہ غفلت کا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی گناہ اللہ کی نظر میں نہ آیا ہو. پھر قیامت والے دن جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسی کا ہے, تو کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی ہو کہ خدا کے آگے شفاعت کر سکے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں, لوگ تو کچھ بھی نہیں جانتے, تو اس لیے وہ کچھ سفارش بھی نہیں کر سکیں گے. اللہ کی کرسی بہت وسیع ہے, زمین و آسمان پہ اس کی حکومت قائم ہے اور اس حکومت کو چلانے میں, زمین و آسمان کے قائم رکھنے میں, ان کو چلانے میں, ان کی حفاظت میں اللہ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. وہ بہت بلند, بہت عظیم ہے. اس عظیم ہستی نے یہ قانون بنایا ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا, یعنی دلوں میں ہدایت ڈال نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. البتہ اتنا کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ ہدایت کو واضح کر دیا ہے, گمراہی کے مقابلے میں بالکل نکھر کر سامنے آ گئی ہے. تو اب جو طاغوت کا اپنے لیڈروں کی بات ماننے کی بجائے ان کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی بات کو مانیں گے, تو سمجھو کہ اس نے بہت مضبوط سہارے کو پکڑ لیا ہے. یہ سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو عروۃ الوثقی والی ذات الہی ہے, یہ اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں, اور جو طاغوت ہیں, قریش کے لیڈر ہیں, یہودی علماء جو طاغوت کا روپ اختیار کر چکے تھے وہ ہیں, یہ سارے کے سارے روشنی سے ظلمات کی طرف ہانک لے جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے دوزخ میں پڑیں گے. اب اپنے چند بندوں کی اللہ تعالیٰ نے تین مثالیں آگے دے رہے ہیں, جس میں تینوں کے تینوں انبیاء ہیں, اور تینوں کے تینوں انبیاء کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ظلمات سے نکالنے کا معاملہ کیا ہے اس کی مثالیں ہیں, یا عروہ وثقی کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مضبوط سہارا ان کو حاصل تھا. اور جس نے اللہ تعالیٰ کا سہارا نہیں پکڑا اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے, ان کو واضح کرنے کے لیے پہلا واقعہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے زمانے کے بادشاہ کا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا تم نے نہیں دیکھا اس آدمی کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی صرف اس بنیاد پر کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کر رکھی تھی. اس بات کا داستان یوں ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے, تو اس نے آگے سے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ علیہ السلام کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو آپ مغرب سے لے آئیے. تو یہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. اب اس آیت کے اجزاء کو الگ الگ سمجھ لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے ان کے زمانے کا بادشاہ, بعض اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام نمرود ہے, بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ حمورابی کے زمانے میں معاملہ ہوا تھا. جو بھی ہو بادشاہ تھا, بہرحال اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا, نمرود ہو یا حمورابی ہو, وہ جب ابراہیم علیہ السلام گئے ہوں گے بتوں کے توڑنے کے بعد پکڑ کے بادشاہ کے پاس جب بلایا گیا ہوگا, یہ غالباً اس وقت کا واقعہ ہے, تو وہ صرف اس وجہ سے یہ بحث کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کر رکھی تھی. مطلب یہ کہ وہ بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتا, خدا کی خدائی کو مانتا, توحید کا قائل ہوتا, اس کے بجائے اس نے اپنے بادشاہی کے زوم میں یہ تصور کیا کہ بس میں بادشاہ ہوں, بات کر سکتا ہوں, اور ابراہیم میری رعایا ہیں علیہ السلام, تو ان کے ساتھ میں جو چاہے سلوک کر سکتا ہوں. تو بجائے شکر کے اس نے یہ سوال ابراہیم علیہ السلام سے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی دلیل دی کہ میرا رب کون ہے, جو پہلی بات کہی وہ یہ کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. آیت الکرسی کے پس منظر میں الحی والقیوم کو سامنے رکھیے اور یہ بات بھی سامنے رکھیے, الذی یحیی و یمیت. یہ دراصل میں پہلے بھی سورہ البقرہ کے شروع میں عرض کیا تھا جب وہ آیتیں آئی تھیں کہ سو بدو ربکم الذی خلقکم والی آیتیں جو ہیں والذین من قبلکم, تو وہاں پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید یا دین ابراہیمی میں جس خدا کو مانا جاتا ہے وہ حقیقی خدا ہے, یہ نہیں کہ جو ابراہیم نے تخلیق کر لیا تھا یا جو ہندوؤں نے بنا لیا یا حضرت موسیٰ نے خود ایک تصور خدا کا دیا. قرآن مجید میں بھی اور ادیان ابراہیم میں بھی اس خدا کو منوایا جاتا ہے یا اس خدا کے ماننے کی بات کی جاتی ہے جو اس دنیا کا حقیقی خدا ہے. تو تعارف کیا کرایا تھا, زمین و آسمان کا بنانے والا ہے. تعارف کیا کرایا جائے گا, جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. تعارف کیا کرایا جائے گا, جو زندگی اور موت دیتا ہے. یہ نہیں کہ وہ خدا جو ابراہیم تعارف کرا رہے ہیں, نہیں, وہ نہیں. تو نمرود یا حمورابی جو خدا بنے بیٹھے تھے وہ نہیں تھے جو زندگی اور موت دیتے ہیں, وہ خدا نہیں تھے. تو یہ حقیقی خدا کا تعارف ہے. بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے, بلا شبہ اس کی دلیل ہے, لیکن جس سیاق و سباق میں آیا ہے وہ یہ سیاق و سباق نہیں کہ اللہ کو ثابت کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ تعارف کرایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس خدا کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی کہ رب ہے کہ نہیں ہے, بحث ہو رہی ہے ابراہیم کے رب کے بارے میں علیہ السلام. تو جملہ یوں ہے کہ کیا تم نے اس شخص کے بارے اس شخص کو نہیں دیکھا. یہ علم طرح ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اسی طرح سے, اور جب ہم نے جو پہلا ترجمہ پڑھا ہوتا ہے نا وہ کافی اثر انداز رہتا ہے. تو علم طرح اللہ حاجہ کا صحیح ترجمہ تمہاری کیا رائے ہے, کبھی غور کیا ہے ابراہیم کے اس آدمی کے بارے میں جس نے ابراہیم سے خدا کے بارے میں؟ تو وہ ترجمہ ہم یہی کر جاتے ہیں لفظی اعتبار سے کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس کو جس نے ابراہیم سے بحث کی. تو ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی اس نے ان کے رب کے بارے میں کہ تم کس رب کو مانتے ہو جس کی خاطر تم نے بت توڑ دیے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا ہے کہ میرا رب کون ہے, میں کس کو رب مانتا ہوں, وہ جو سب کو زندگی دیتا ہے اور جو سب کو موت دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ میں, نمرود, حمورابی, آپ کسی کو قتل کریں تو کیا ہوگا, مجرم. اللہ تعالیٰ روزانہ موت دے رہے ہیں, مجرم نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خالق و مالک, خالق اور مالک ہونے کی وجہ سے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کی چاہیں جان قبض کر لیں, جس کی چاہیں چھوڑ دیں. اور جو دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ چل رہا ہے وہ جو چلا رہا ہے اس خدا کی بات ہو رہی ہے. تو بادشاہ نمرود قتل کرے گا تو اس کو پتہ ہے کہ میں اگر مظلوم کو قتل کروں گا تو کل میرے اوپر ببال آئے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا نہیں ہے. چنانچہ سورہ الشمس کے آخر پہ ایک آیت ہے, لا یخاف عقباہا, اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کو بالکل مٹا کے رکھ دیا اور उसके अंजाम से अल्लाह ताला डरते नहीं हैं, सफाया कर दी, क्योंकि खुदा खुदा है, उसको यह हक हासिल है। नाचे इसी हक की वजह से वो रोज़ाना जिंदगियां भी दे रहा है और रोज़ाना जिंदगी छीन भी रहा। तो ये तारुफ था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा का कि ये वो खुदा, मैं उस खुदा को मानता हूँ जो पूरी दुनिया में जिसकी हुकूमत है, जिंदगियां दे रहा है, मार रहा। उसने आगे से कहा कि अना ओही व उम्मीद, मतलब कितने सजाए मौत पाने वाले हैं जिनको मैं ज़िंदगी दे देता हूँ और कितने हैं जिनको मैं अपनी मर्ज़ी से मरवा देता हूँ हालांकि उनका कोई कसूर नहीं होता। ये उसने आगे से कह दिया नमरूद ने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसकी अल्लाह ताला ने तारीफ भी किया है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी सलाहियत दी थी बहस करने की, उसका यहाँ भी इजहार होता। तो बजाय इसके कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं है ज़िंदगी और मौत देने से जो तुम समझ लिया है, मैं तो उस हकीकी ज़िंदगी देने को और हकीकी मौत देने की बात कर रहा हूँ। यानी नमरूद के हाथों से उसके अपने मुल्क की राय के सिवा सारे लोग बचे हुए थे, वो किसी को मौत नहीं दे सकता, तो बहस कर सकते थे कि ज़रा तुम कनान से बाहर या इराक से बाहर जो लोग हैं उनको ज़रा सज़ा देकर देखो, उनको मौत नाफज कर सकते हो। तो ये उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने एक अच्छे गुफ्तगू करने वाले की तरह अगली दलील दे दी, अगला तारुफ दे दिया कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है तो तुम ज़रा मगरब से निकाल लाओ। अब ज़ाहिर है कि ये इसका जवाब देना मुमकिन नहीं था। तो कुरान का तबसरा है फबोहित अल्लाजी कफर, तो वो कुफर करने वाला मबहूत होकर रह गया, जवाब ही कोई नहीं था। तो अच्छे, इसमें आप मेरे और आपके लिए दलील किस तरह से दी जाती है, गुफ्तगू किस तरह से की जाती है, उसका एक अच्छा नमूना है कि उन्होंने जो पहले बात कही थी वो भी इसी लेवल की थी। अगर कोई समझदार आदमी होता तो आगे से ये ना कहता कि मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ, जो मानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जुमले के थे कि मैं उस खुदा को खुदा मानता हूँ जो ज़िंदगी और मौत देता है। तो नमरूद को आगे से ये नहीं कहना बनता था, लेकिन उसने कह दिया हठ धर्मी ने। अब हठ धर्मी का रास्ता कैसे रोका जाए, उसके लिए उन्होंने कहा कि मेरा रब जो है वो मशरक़ को सूरज से निकालता है तो तुम मगरब से निकाल दो। अब वो निकाल तो सकता नहीं था, रब होने का अपने का सबूत दे नहीं सकता था। अब यहाँ कोई सवाल कर सकता है कि वो यहाँ भी कोई बहाना बनाता, ठीक है कि मैं ही निकालता हूँ मशरक से, तुम अपने रब को कहो कि मगरब से निकाले। नहीं, वो चूँकि खुदा बना बैठा था तो अब उसको तब्दील करके दिखाना मतलब था कि जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ करके दिखा दो, जो कुछ हो रहा है उसके ख़िलाफ़ करके दिखा दो तो मैं तुम्हें खुदा मान लूँगा। ये चैलेंज को बना दिया, तो एक अमली चीज़ में फंसा दिया, ना कि इल्मी चीज़ में। ख्याली या अकल की बात अब नहीं रह गई थी, अब अमल करके दिखाना था कि जो कुछ हो रहा है उसको तब्दील कर दो। फिर खुदा अगर मशरक से निकाल रहा है और तुम ही खुदा हो और मशरक से निकालते रहते हो, तो आज मगरब से निकाल के दिखा दो। ये उन्होंने उसको बिल्कुल बेबस कर दिया, कॉर्नर कर दिया, चुनाचे वो मबहूत होकर रह गया। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, इसलिए मबहूत होकर रह गया कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को राह नहीं दिखाते। ये जुमला बहुत खूबी के साथ दो बातें कहता है कि अल्लाह ताला काफिरों को मबहूत ही छोड़ देते हैं, उनके पास जवाब नहीं बनता, एक मतलब ये है। और दूसरी बात, दूसरा मतलब यह है कि वो मबहूत होने के बाद भी हदायत से महरूम रहा, क्योंकि उसके अंदर बात मानने का जज्बा नहीं था। तो होना तो ये चाहिए था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चुप करा दिया है तो इकरार करता कि ठीक है मैं खुदा नहीं हूँ और अल्लाह ही को खुदा मानना चाहिए। तो बजाय इसके कि वो कुफर मानने के बजाय वो कुफर पर कायम रहा, तो अब ये जुमला दोनों बातें कह रहा है, वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, कि अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को राह याब नहीं करता, हदायत नहीं देता, दोनों तरह की, ना जवाब बन पाता है ना हदायत नसीब होती है। क्योंकि इसका सही जवाब यही था कि इब्राहिम तुमने बिल्कुल सही बात कर दी है, मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान लाता हूँ, सही जवाब यही था। लेकिन उसके बस में नहीं था ये कहना, बादशाह था और बादशाहों को यह भी डर होता है कि कहीं रियाया ही ना बगावत कर दें, तो तख्त न छीन लिया जाए। तो ये सारी रुकावटें उसके सामने थीं, इसलिए उसने इब्राहिम के खुदा को नहीं माना। अब यहाँ जो जिस खुदा का तारुफ यहाँ हो रहा है वो वही खुदा है जिसका सूरह आगे पीछे आयतुल कुर्सी में जिक्र हुआ है और जिसको उर्वतुल वुस्का करार दिया गया कि जिसने अल्लाह को मान लिया उसने मजबूत सहारा पकड़ लिया। तो वो मजबूत सहारा कौन है? जो ज़िंदगी और मौत देता है, जो सूरज को मशरक से निकाल रहा है, कल मगरब से भी निकालना चाहेगा तो निकाल लेगा। ये तो तारीफ है, ये जिस मौका महल में ये आयतें आई हैं उसमें इस बात को वाज़े करने के लिए है कि जंग हो या जिहाद हो या जो सूरह अल बकरा के ज़माना नज़ूल में हालात थे उसमें तुम लोगों को क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए। क्या नमरूद वाला के मबहूत होने के बावजूद, लाजवाब होने के बावजूद कुफर पर कायम रहना और मबहूत होकर रह जाना है, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह सच्चाई को मान लेना है? और इसमें दिलनवाजी की बात यह थी कि ये इनके अबूजद हैं, यहूद हों या कुरैश, दोनों के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मरकज़ व महवर है। अगरचे यहूद ने बाद में हज़रत मूसा को मरकज़ महवर मान लिया था, लेकिन बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी वो इनकार नहीं करते थे और पूरी शान के साथ मानते थे। तो एक ख़ानदानी होने की नस्बत भी थी, फिर नमरूद जैसे बादशाह या हमोराबी जैसे बादशाह के सामने इस पर खूबसूरत गुफ्तगू की जो बात थी वो, फिर तौहीद का जो पैगाम था वो, फिर उर्वा वुस्का का जो पैगाम था वो, और फिर एक जाबर बादशाह के सामने इतनी खूबसूरती से गुफ्तगू करने का जो सब कुछ था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी एक मकाम बहुत बुलंद नज़र आ रहा है, और जो बाप के साथ मोहब्बत होती है वो भी असरंदाज हो रही है। तो गोया एक ऐसी जगह पे ये आयत है कि उधर उर्वतुल वुस्का, उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उधर आयतुल कुर्सी, और बीच में ये एक खूबसूरत वाक्या जिसने तौहीद, खुदा पर भरोसा करने, और जो पीछे मजमून चल रहा था सूरह अल बकरा में जंग का, अल्लाह की राह में निकल पड़ने का, दीन बातिल को छोड़कर हक को कबूल करने का, वो सारे के लिए मजबूत बुनियाद फराहम कर दी गई। तो ये पहला वाक्या है, पहली मिसाल है जो उर्वतुल वुस्का वाली ज़ात का तारुफ कराने के लिए पेश की गई है। और इसमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला उन लोगों को ज़ुलमात ही में छोड़ देते हैं जो खुद तागूत होते हैं। तो गोया यहाँ समझ लीजिए कि जो बादशाह है वो एक तागूत की जगह पे है, तो अपनी कौम को भी उसने गुमराह किया था और ख़ुद भी मबहूत होकर रह गया। दूसरी जो मिसाल दी है, दूसरा वाक्य जो बयान किया है, औ कल्लज़ी मर्रा अला करियतिन वहिया खावियतुन अला अरूशिहा काला अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बाद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मियत आमिन सुम्मा बासहु काला कम लबिस्ता काला लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम काला कल बल लबिस्ता मियत आमिन फ़ंज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्नह वंज़ुर इला हिमारिक वाले नजाला का आयतन लिन्नासि वंज़ुर इला इज़ाम कैफ़ नुंशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमन। तो यहाँ अब फरमाया कि दूसरी मिसाल उस आदमी की है जो एक बस्ती पर से गुज़रा, तो वो बस्ती अपने छतों के ऊपर ओंधी पड़ी हुई थी। अरूश का लफ्ज़ जो है ये दोनों मानी देता है, अरूश बुनियाद को भी कहते हैं, बुनियाद से ज़्यादा तामीर को कहते हैं, और छत को भी कहते हैं। तो अगर खावियतन अला अरूशिहा को छत के मानी में लें अरूश को, तो फिर इसका मतलब है कि दीवारें खड़ी रह गई हैं और छत ज़मीन पर पड़ी हुई है। ये कई घरों में आपने देखा होगा कि दीवारें खड़ी रह जाती हैं, छतें गायब हो जाती हैं या ज़मीन पर पड़ी होती हैं, तो ऐसा लगता है कि छतें नीचे आ गई हैं और दीवारें ऊपर चली गई हैं। जैसे ग्लास को उल्टा कर दें तो छत ऊपर है, ग्लास को सीधा कर दें तो छत नीचे चली गई। ठीक है, तो ये अला अरूशिहा का मतलब है कि छतें जो ऊपर होती हैं वो नीचे आ गई हुई हैं और दीवारें छतों के ऊपर खड़ी हैं। तो एक तस्वीर ये है, तो अरब इसको खावियतुल्ला अरूशिहा से बयान करेंगे। दूसरा यह है कि बुनियादों पर गिर गई हुई थी, यानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, दीवारें भी कायम नहीं रही थी। तो दोनों मतलब हो सकते हैं, मतलब सिर्फ इतना है कि बस्ती बर्बाद हो चुकी थी। तब वहाँ पे इस बस्ती के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, इस पैगंबर के बारे में भी कि ये किन की बात है। कुछ लोगों ने हिजकील मुराद लिए हैं और कुछ लोगों ने नहमिया नबी जो है उनको मुराद लिया है। लेकिन बहरहाल नहमिया नबी का तो कोई इस तरह का वाक़या तौरात में नकल नहीं हुआ, लेकिन हिजकील का वाक़या एक है जो इससे मुख्तलिफ है। अलैहिस्सलाम अम्बिया में से हैं हिजकील। जो तौरात में वाक्या नकल हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर मैं वो भी अर्ज़ कर देता हूँ। कि बस्ती अपनी छतों पर उल्टी हुई थी, यानी दीवारें खड़ी थीं और छतें ज़मीन बोस थीं या बुनियादों ही पर गिर गई हुई थी। लगता है कोई अल्लाह का अजाब आया था। इस वादी कौन सी है, इसमें बहुत सारे लोगों ने समझाए कि वक्त नसर के बाद जो यरूशलम में तबाही हुई थी उसकी तरफ इशारा है। तो उन्होंने देखने के बाद कहा कि ये अन्ना योही हाज़िल्लाहु बादा मौतिहा, इस बस्ती वालों को अल्लाह ताला कहाँ से ज़िंदा कर लेंगे जबकि ये मर चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि जवाब देने की बजाय फ़ामातहुल्लाहु मियता आमिन, अल्लाह ताला ने इन बुज़ुर्गों को 100 साल के लिए मौत दे दी, 100 साल के लिए मार डाला। सुम्मा बासा, 100 साल के बाद फिर जगाया। काला कम लबिस्ता, तो अल्लाह ताला ने पूछा कि कितने साल रहे हो यहाँ, कब कितने देर रहे हो। काला लबिस्त यौमन व बाद यौम, तो उन्होंने कहा कि एक दिन या कुछ घंटे। ठीक, अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, 100 साल पड़े रहे वहाँ पर, 100 साल पड़े रहे, लेकिन उनका एहसास इतना ही था कि बस घंटा दो घंटा सोया हूँ या एक दिन सोया हूँ। तो फरमाया कि काला बल लबिस्ता मियात आमिन, मैं कि नहीं तुम एक दो दिन नहीं रहे बल्कि 100 साल रहे हो। फंजुरिला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, तुम इस खाने की तरफ देखो और अपने पानी की तरफ देखो, इसमें कोई ख़राबी पैदा नहीं हुई। वंजुरिला हिमारिक, और अपने गधे की तरफ देखो, गल सड़ गया, उसकी कोई चीज़ बाकी नहीं रही। वाले नाचाला का आयतन लिन्नास वंजुरिलाज़ाम कई फ़नून शुहा, फरमाया कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे, तो अब ज़रा इन हड्डियों की तरफ देखो, हम इनको कैसे दोबारा उठा खड़ा करते हैं। सुमा नक्सूहा लहमन, फिर हम किस तरह से इनके ऊपर गोश्त चढ़ा देंगे। फलम्मा तबय्यन लहु काला आलमु अन्नल्लाह आला कुल्ल शयइन कदीर, तो जब ये मंज़र उनके सामने वाज़े हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। अब ये एक मौजज़ा है और मौजज़े के बारे में दौरे जदीद में ये मुतालबा किया जाता है कि कोई साइंसी एक्सप्लेनेशन हो, कोई साइंसी तौजीह हो। तो जिस चीज़ की साइंसी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी वो मौजज़ा कैसे रहेगा, वो तो मैं आप भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा ट्रिक निकाल लें कि लोगों को कुछ दिखाई दे, हो कुछ। तो ये मौजज़ा था, खालिसतन अल्लाह के हुक्म से हुआ था। जिस कलमाए कुन से ये कायनात बनी है उसी तरह के कलमात से ये सारा कुछ हो रहा था। अल्लाह ने एक आदमी को जो भी थे उनको वफात दी, 100 साल वहीं उस बस्ती में पड़े रहे, उनका खाना भी वहाँ था, उनका पानी पीने का जो मशरूब था, लगता यही है कि वो भी पानी खालस नहीं था बल्कि कोई दूध वगैरह या कोई इस तरह की चीज़, क्योंकि लम या तसन्ना दोनों के लिए आया। तो वो ना खाना ख़राब हुआ था ना पानी ख़राब हुआ, जो पीने का मशरूब था उनका, ना वो ख़राब हुआ था ना वो ख़राब हुआ था, जबकि गधा कल सड़ गया हुआ था। तो गोया दो चीज़ें बिल्कुल महफूज रहीं, एक ये बुज़ुर्ग 100 साल तक जीते जागते रहे और जो उनका खाना पीना था वो भी बिल्कुल सही रहा, लेकिन गधा गल चढ़ गया हुआ था। उस गधे को उनके सामने, उन बुज़ुर्गों के सामने उनकी हड्डियां ठीक की गईं गधे की, उनके ऊपर गोश्त चढ़ाकर जीता जागता बना दिया गया। ये वाक्या यहाँ बयान हुआ है। और हिजकील का जो वाक्या तौरात में बयान हुआ है यानी बाइबल में, वो कुछ यूँ है कि बस्ती में गए तो उस बस्ती में, यहाँ इनके अपने मरने का ज़िक्र है, वहाँ उनके अपने मरने का ज़िक्र नहीं है, बल्कि उन्होंने मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम नबूवत करो, नबूवत करो यानी मेरी बुनियाद पर एक बात कहो, तो उन्होंने हड्डी गली सड़ी किसी यरूशलम की बस्ती में गए तो लाशें लाशें पड़ी हुई थी, तो उन्होंने उनको नबूवत की कि जिंदा हो जाओ। वो हड्डियाँ खड़ी हो गईं, फिर उन्होंने कहा कि इनके ऊपर गोश्त चढ़ जाए, गोश्त चढ़ गया, फिर उन्होंने कहा कि ज़िंदगी मिल जाए, ज़िंदगी मिल गई। तो इस तरह से जितने भी वहाँ लोग पड़े हुए थे वो सारे के सारे ज़िंदा हो गए, जबकि कुरान मजीद में वाक़या कुछ यूँ है। लगता है कि यही वाक़या होगा या वो एक अलग वाक़या होगा, ये एक अलग वाक़या है। तो इन बुज़ुर्गों का हमें फिर पता नहीं, अगर वो एक अलग वाक़या है और ये अलग वाक़या है तो हम फिर इन बुज़ुर्गों से वाकिफ़ नहीं हैं कि ये कौन है। लेकिन बहरहाल मालूम यही होता है कि ये अंबिया में से होने चाहिए, रसूलों में से होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलात अल्लाह ताला अंबिया के साथ ही करते हैं। अगर किसी को इसमें दलील पूछनी हो तो वो हज़रत ईसा के साथियों का मायदा का मुतालबा है कि हज़रत ईसा के साथियों ने कहा कि ईसा, क्या आप अपने रब से कह सकते हैं कि आसमान से पका पकाया खाना हमारे लिए भी वैसे ही आ जाए जैसे यहूद के लिए मनोसलवा आया था? तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों कर मांगना चाहते हो? वही जवाब दिया जो आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब आ रहा है कि इत्मीनान के लिए। लेकिन हज़रत ईसा ने जब बात की अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला ने कहा मैं दिखा नाजल तो कर दूंगा, क्योंकि नबी मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मांगने वाले नबी नहीं हैं बल्कि उम्मती हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ मैं खाना तो उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर जो फिरेगा उसको सज़ा सख्त मिलेगी। तो हज़रत ईसा के सहाबा जो हैं वो डर गए, उन्होंने फिर मुतालबा नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि जो अंबिया हैं उनके मुतालबात पूरे कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनको नबूवत का जो काम करना होता है उसके लिए ये चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का या इन बुज़ुर्गों का जिक्र हुआ है। तो अगर ये आम इंसान होते, उम्मती होते, तो ये बात पूरी ना की जाती उनके साथ, कि वो जाकर बस्ती को कहें कि जो उल्टी हुई है कि अब अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करेगा, और फिर अल्लाह ताला एक पूरा 100 साल का काम कर दें। अगला जो तीसरा वाक़या है, तो मुजज़ात अल्लाह के, मुजज़े के अंदर साइंस ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म होता है बस। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग ठंडा करना चाहें कर देते हैं, वो मिट्टी से आदम बनाना चाहें आदम बना देते हैं, वो ज़िंदगी देना चाहें ज़िंदगी दे देते हैं, वो हज़रत याहिया के वालिदैन जो होते हैं बूढ़े हो चुके हैं, वालिदैन दोनों इस काबिल नहीं हैं, वालिदा इस शुरू से ही औलाद जनने के लायक नहीं है और वालिद हैं वो नहायत बूढ़े हो चुके हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला बुढ़ापे में उनको औलाद दे देता है। तो ये खुदा की दुनिया है, खुदा इसको चलाते हैं। अमूमी तौर पर वो अपना ये पर्दा नहीं हटाते, लेकिन अम्बिया के लिए उनकी कह लीजिए कि एतमाद के लिए, जैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब सूरह नजम में पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला ने बताया है कि मैंने किस तरह के बड़ी निशानियाँ उनको दिखाई ताकि उनको यकीन हो कि वो अल्लाह ताला के साथ मामला उनका, और अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दी है और वो पूरे एतमाद के साथ फिर बात कर सकें। ऐसा ही इन अंबिया के साथ भी सूरह नजम वाला मामला ही है जो ये हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हो, नजम वाला वाक़या हो, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो आगे वाक़या आ रहा है वो हो, हिज़कील अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या जो अभी मैंने बयान किया है, ये गोया उनके वो आयात रब्बेहिल कुबरा है जिनको उनको दिखाया जाता है ताकि वो कार्य नबूवत को अच्छे तरीके से कर सकें। आगे जो वाक़या है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, इसका आला इब्राहीम रब्बी आरिनी कैफ़ा तुहजिल मौता। तो याद करो जब इब्राहीम ने कहा कि मेरे रब मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेंगे। काला अवलम तुमिन, अल्लाह ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या तुम ईमान मानते नहीं हो इस बात को। काला बला वला किन लयतमईन नकल भी, कहते हैं क्यों नहीं, मैं मानता हूँ कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं, लेकिन अपने दिली इत्मीनान के लिए ऐसा कर मांगा। अब क्या ईमान और दिली इत्मीनान में फ़र्क है कुछ? एक सवाल ये पैदा हो जाता है। दूसरा सवाल ये पैदा हो सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान क्यों नहीं था अल्लाह ताला की बातों पर? ठीक है, तो ये वो सवालात हैं जो इस जुमले को सुनते ही पैदा होते हैं। ये इसलिए कि हमने जो इत्मीनान के मानी तय कर रखे हैं उसके लिहाज से ये सवाल पैदा होते हैं। सादा बात इतनी थी कि उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे मर्दों को ज़िंदा करते हैं, कि मैं ईमान वाला हूँ लेकिन जो कभी कभी दिल में तरद्दुदात पैदा हो जाते हैं, कितना मुश्किल काम है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो तरद्दुद दूर हो जाते, इत्मीनान उलट है तरद्दुद का और हरकत का, इत्मीनान उलट है बेइत्मीनानी का नहीं, बेईमानी का नहीं, ये बेयकीनी का नहीं है, इत्मीनान उलट है अरबी ज़ुबान में तरद्दुद का और हरकत का, यानी आप चलते चलते रुक जाएं तो इत्मीनान ना, आप साकिन हो गए तो इत्मीनान हो गया है, आप गौर व खोज करते हुए किसी जगह पे पहुंच रहे हैं, आज ये राय कल ये राय, और एक जगह पे पहुंच गए तो ये इत्मीनान हो गया। तो ये असल में दरअसल सिर्फ अपने एक मुशाहिदे के बाद दिली तस्कीन के माने में यहाँ बोला गया है कि मेरा जो तरद्दुद है वो दूर हो जाएगा बस। अब ये इत्मीनान खुदा की कुदरत पर नहीं है कि अल्लाह ताला कर नहीं सकते, इस बात पर है कि होगा कैसे। उनका जो जुमला है वो कैफ़ तुहयिल मौता का है कि आप ज़िंदा कैसे करेंगे, ये नहीं है कि आप ज़िंदा कर सकते हैं कि नहीं, ये सवाल नहीं। ठीक है, तो कैसा के अंदर के कैसे ज़िंदा करेंगे, उसके अंदर ईमान भी चैलेंज हो रहा था, उसकी पहली तसल्ली हो गई कि नहीं नहीं ईमान तो है, ये मुझे पता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो सवाल का जवाब। अब अल्लाह ताला ने उनका दिल मुतमिन करने के लिए तरीका क्या इख्तियार किया, काला फ़ुज़ अरबातन मिनतर, कि आप चार परिंदे ले लीजिए, फसुर हुन्ना इलाइक, और उनको अपने से आदि कर लीजिए, मानूस कर लीजिए, सुमाजल अला कुल्ले जबलिन मिनहुन्ना जुजा, फिर उनमें से उनको काट दीजिए और काट कर उनमें से एक एक जुज मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दीजिए, सुमदुहुन्ना यातीना का साया, फिर उनको तुम आवाज़ देना तो वो तुम्हारी तरफ भागते हुए आएंगे, वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और जान रखो कि अल्लाह ताला अज़ीज़ुन हकीम है। अब स्कीम क्या बताई कि चार परिंदे ले लीजिए, उन्हें अपने से आदि कर लीजिए, उन्हें मानूस कर लीजिए, आप उनको आवाज़ दें वो आ जाएं, आप उनको आवाज़ दें वो चले जाएं, जैसे हम सुधा लेते हैं, तो ये ताल्लुक आप परिंदों के साथ पैदा कर लीजिए, चार परिंदों के साथ, उन्होंने चार परिंदे ले लिए होंगे और फिर सुधा लिया होगा अपने साथ, वो उनको आवाज़ देते होंगे वो भागे हुए आ जाते होंगे, वो उनको भगाते होंगे भाग जाते होंगे। ये जब कर लिया उन्होंने तो फिर उन्होंने क्या किया कि चार उन चारों को ज़िबा किया, टुकड़े किए उनके, यानी मार दिया उनको, मार दिया और फिर मुख्तलिफ पहाड़ों पर उनके टुकड़े रख दिए, फिर उनको आवाज़ दी तो वो परिंदे उसी तरह से भागते हुए उनके पास आ गए। तो फरमाया कि तुम ऐसा कर लो, ये तरीका बता दिया, जाहिर है कि आगे अल्लाह ताला ने बताया कि उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने किया होगा, तो उसके बाद वो परिंदे ज़िंदा होकर उनके पास आ गए होंगे। तो जान लीजिए कि अल्लाह ताला अज़ीज़ और हकीम है। अब ये मुश्किल जुमलों में से है, क्योंकि ऊपर की पूरी बात में हिकमत क्या है और खुदा का अज़ीज़ होना कैसे निकल रहा है वो समझना चाहिए। अज़ीज़ होने का मतलब है ज़बरदस्त, तो ठीक है, अल्लाह ताला ने बेजान परिंदों के टुकड़ों में ज़िंदगी डाल दी। हकीम होना कैसे है? हकीम होना यानी अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुतालबे पर हिकमत के साथ मामला किया है, ऐसा नहीं किया कि डांट दिया, नहीं, उनको जिस इत्मीनान की ज़रूरत थी कि वो उस प्रोसेस को देखना चाहते थे कि कैसा होता है, वो अल्लाह ताला ने दिखा दिए, लेकिन दिखाया कितना, बस जितना दिखा सकते थे, यानी ऐसा नहीं हुआ कि परिंदों में जैसे वो उन बुज़ुर्गों हिजकील के साथ हुआ कि हड्डियाँ उठीं, हड्डियाँ जुड़ गईं आपस में और उनके ऊपर गोश्त चढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो परिंदे जो थे एक सेकंड में जैसे ही उन्होंने आवाज़ दी उड़ते हुए वापस आ गए। तो हिजकील के साथ या उन साहिब के साथ पूरा एक प्रोसेस उनके सामने हुआ है, हड्डियाँ खड़ी हुई हैं, हड्डियाँ जुड़ गई हैं और पूरा ढांचा बन गया है गधे का, फिर उस गधे के ढांचे के ऊपर गोश्त चढ़ गया है और फिर वो ज़िंदा हो गया। तो ये कुछ ज़्यादा तफसीली था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा तफसीली नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कैफा के अंदर जो अल्लाह ने जिस बात का जवाब दिया है वो तरीक़ेकार का नहीं, बल्कि इसका था कि ज़िंदा करने में एक लम्हा ही लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो क़्यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला के लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि उधर सूर फोंका जाएगा उधर सारे ज़िंदा हो जाएंगे, एक सेकंड लगेगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये मुश्किल का जवाब था। पहला जवाब जो था वो अन्ना कहाँ से ज़िंदा करेगा, वो उसका जवाब था। तो दोनों सवाल डिफरेंट थे, इसलिए दोनों का जवाब भी डिफरेंट आया। हेस्किल या जिन बुज़ुर्गों को हम अभी पहचान नहीं पा रहे, उनका सवाल था कि कहाँ से ज़िंदा कर लेंगे अल्लाह ताला, उसका जवाब वो दिया गया कि देखो हड्डियाँ खड़ी हो जाएंगी, उनके ऊपर गोश्त चढ़ जाएगा, ज़िंदगी पैदा हो जाएगी। हज़रत इब्राहिम ने जब सवाल किया कि कैफा, कैसे होगा, एक लम्हे में होगा। ये दोनों बुज़ुर्गों का सवाल डिफरेंट था, इसलिए दोनों को जवाब भी मुख्तलिफ दिया गया। अब जो पहला वाक्या बयान हुआ था उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगाज़ कहाँ से किया था, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, ठीक है, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। ये दोनों वाक़यात मौत देने और ज़िंदगी देने के। अब अहमियत इस बात की है कि ये क्या चक्कर है, अल्लाह ताला यहाँ पर ज़िंदगी देने और मौत देने को इतना नुमायाँ क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने शुरू में एक जुमला बोला था जब यह बात शुरू की थी कि इलाह का हक है और अल्लाह ताला को इलाह होना इसीलिए है कि ज़िंदगी और मौत उनके कंट्रोल में है, वो ज़िंदगी दे सकते हैं, मैं आप ज़िंदगी नहीं दे सकते। हम कत्ल तो कर सकते हैं लेकिन किसी मरते हुए बीमार को ज़िंदगी नहीं दे सकते, नामुमकिन है। कत्ल भी इसलिए कर सकते हैं कि अल्लाह ने इम्कान रखा है कत्ल करने का, अगर अल्लाह ताला इम्कान ना रखते तो ये काम नहीं हो सकता था, कत्ल भी नहीं हो सकता। लेकिन कितने ही कत्ल हैं जो किए गए लेकिन उनको ज़िंदगी बाकी रही, कितने ही कत्ल हर रोज़ होते हैं लेकिन लोग बच जाते हैं। हमारे अपने दोस्त मंजूरुल हसन साहब के मुंह में रख के गोली मारी दुश्मनों ने, वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा, यानी मुंह में गोली रख के मारी और गर्दन में जाकर रुक गई, वो दांत तोड़ती हुई सारे, उसकी रफ्तार स्लो हो गई, वो पीछे से निकली नहीं है, आज भी उनकी गर्दन में ठीक ठाक है, जिंदा है। तो मौत और ज़िंदगी किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। ये मौत और ज़िंदगी का मामला खुदा के कंट्रोल में है, ये खुदा की खुदाई की एक बड़ी सिफत है, एक बड़ी अलामत है कि अल्लाह ताला के खुदा होने का मामला ज़िंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है। तो खुदा के खुदा होने में पहली चीज़ खल्क है कि अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात तख्लीक की है, खालिक होने के एतबार से वो हमारे रब हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे खुदा हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि ज़िंदगी उन्होंने दी है, मौत उनके हाथ में है, और जिसको चाहते हैं ज़िंदगी दे देते हैं, जिसको चाहते हैं मार डालते हैं। ये पूरा का पूरा इख्तियार सिर्फ इलाह वाहिद के पास, किसी और के पास नहीं है। अब ज़िंदगी और मौत और जिहाद, इन दोनों का आपस में बहुत बाहमी ताल्लुक है। तो जो जिहाद का मज़मून पीछे चल रहा था आयतुल कुर्सी से पहले, उसके साथ इसका ज़िंदगी और मौत का जो हवाला है वो उसके साथ भी जुड़ता है। तो यहाँ इस मज़मून की दो पहलुओं से अहमियत थी, उरवतुल वुस्का, ज़िंदगी और मौत किसके हाथ में है, वो उरवतुल वुस्का है, मजबूत तरीन सहारा है। और जिहाद के एतबार से ज़िंदगी और मौत किसके हाथ में है, और खुदा की खुदाई के एतबार से खुदा होने के लिए ज़िंदगी और मौत का क्या मामला है, वो सारा कुछ यहाँ बयान हो गया है, खुदा का तारुफ़ ज़िंदगी और मौत के पहलू से। तो ये जो खुदा की कायनात में ज़िंदगी और मौत का ये मामला चल रहा है, किसको ये मौजज़ात दिखाने हैं, किसको नहीं दिखाने, ये खुदा की हिकमत है। वो अपनी हिकमत के तहत कुछ को दिखा देता है, नमरूद बेबस होकर रह जाता है, उसको नहीं दिखाया क्योंकि वो ज़ालिमीन में से था। हिज़्किल और इब्राहिम ظالمین میں سے نہیں تھے. جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ صرف مومنین کو بھی نہیں دکھایا جاتا اس طرح کی چیزیں, ہو سکتا ہے کہ ختم نبوت سے پہلے عام لوگوں کو بھی ہوتی ہوں, لیکن جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں اس طرح کے معجزانہ, وہ غیر انبیاء کے ساتھ نہیں دکھائے گئے. قرآن مجید میں وہ انبیاء یا انبیاء کے حوالے سے ان کی ماں یا بہن یا جو کچھ بھی ہے ان کے ساتھ ہوگا. تو حضرت عیسیٰ کی والدہ معجزہ ہوا حضرت عیسیٰ کی وجہ سے کہ وہ بن باپ بن شوہر کے صاحب اولاد ہوئیں. حضرت موسیٰ کی والدہ کے ساتھ معاملہ ہوا, وہ بھی سارے کے سارا حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا, ویسے نہیں ہوا. حضرت زکریا کے ساتھ معاملہ ہوا, وہ بھی حضرت یحییٰ کی وجہ سے ہوا, ویسے نہیں ہوا. تو اس لیے پورے قرآن مجید میں غیر نبی کی کوئی کرامت ظاہر نہیں کی گئی, یا اگر وہ غیر نبی تھے تو وہ رسول جو ان کے گھر میں پیدا ہونے والا تھا اس کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا. تو یہ وقت ہو چکا ہے تو ہم یہاں روک لیتے ہیں. آگے جو مضمون ہے وہ دوبارہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جڑ جائے گا, جو جہاد کے حوالے سے مسلسل ایک مضمون چل رہا تھا. تو انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے.